प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
इस सप्ताह के श्रोता साथी हैं जवाहर नगर दुर्ग के आरसी कांबड़े और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील चिपड़े।
श्रोताओं नमस्कार, अरपा कम्युनिटी रेडियो और अरपा वेब रेडियो के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम क्या है, यानी कि सप्ताह के श्रोता, जिसमें हम श्रोता से बातचीत करते हैं, उसके अनुभव साझा करते हैं और बहुत कुछ सीखने समझने को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलता है। आज हमारे साथ रमेश चंद्र कांबड़े हैं और रेडियो की दोस्ती की दुनिया के लोगों में आप आरसी कांबड़े के नाम से जानते हैं, जवाहर नगर दुर्ग से आप हैं। कांबड़े सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
बहुत बहुत नमस्कार सुनील सर और अरपा रेडियो के सभी सुनने वालों तथा श्रोताओं को मेरे ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।
क्योंकि हम जानते हैं कि अरपा एक कम्युनिटी रेडियो है तो इसका नियत और निश्चित दायरा तो है ही, साथ ही अरपा एक वेब रेडियो भी है, तो वेब रेडियो के माध्यम से ये पूरी दुनिया तक पहुंचता है। बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अरपा रेडियो को सुन रहे हैं, उनकी उस श्रोताओं की संख्या भी उसी तरह की है। हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम श्रोताओं से बातचीत करें जो अरपा रेडियो से तो जुड़े ही हैं, लेकिन उसके पहले से कई सालों से वो कई तरह से रेडियो के लोगों से जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ आरसी कांबड़े जी हैं। कांबड़े सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि रेडियो और आपका नाता क्या है?
पहले के समय में अगर हम देखें, और आजकल हर जगह चर्चा भी रही है कि पहले मनोरंजन के लिए केवल एक ही माध्यम था, एक ही साधन था, और वो था रेडियो
जी।
रेडियो ही एक माध्यम था और उस समय तो बहुत कम स्टेशन थे सर, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्टेशन अगर माने हम तो एशिया में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का ऑपरेशन रहा है
जी, जी, जी।
और उसके बाद अगर हम भारत में देखें तो विविध भारती और उर्दू सर्विस, ये दो स्टेशन ऐसे थे जिनके माध्यम से ही हम सारे कार्यक्रम सुन पाते थे। और फिर धीरे धीरे जो है वो क्षेत्रीय रूप से, मतलब आकाशवाणी केंद्र खुलते गए और उसमें अगर हम माने तो आकाशवाणी रायपुर हमारे लिए पहला स्टेशन था। हमारी जानकारी में जब हमने होश संभाला तो बहुत अच्छा लगा, और यही रेडियो स्टेशन ही हम लोगों के लिए मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था और इसी से हम सारे कार्यक्रम सुनते रहे हैं जी।
क्या बात है, अभी आपकी और रेडियो की तैयारी किस तरह की?
अभी भी सर रेडियो तो खैर ये शौक है, और जितने रेडियो सुनने वाले हैं, चाहे आज टीवी का युग आ गया हो, यूट्यूब है अभी, अगर इसको हम मानते भी हैं तो भी अभी रेडियो सुनने वालों की संख्या भले ही थोड़ा कम हो सकती है या हो गई होगी, लेकिन मेरा मानना ये है सर कि जितने भी रेडियो सुन रहे हैं वो एक एक श्रोता लाखों के बराबर है, क्योंकि इनका यानी हम जैसे श्रोताओं के लिए मनोरंजन तो है ही है, इसके अलावा भी इससे हमको बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं। एक तो ऐसा है कि ये अकेले में रहने का सबसे अच्छा साधन है सर, और आप कहीं भी खो जाइए आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जंगल में रहिए, शहर में रहिए, गांव में रहिए, एकांत में रहिए, जहां भी रहिए, रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको मनोरंजन और भरपूर मनोरंजन देता है
जी।
आज भी हम समय निकालकर टीवी के युग में भी सर रेडियो सुनना कम नहीं कर सकते, और रोज रात को अंतिम सभा का कार्यक्रम जो भी हमें पसंद रहता है, चाहे वो उर्दू सर्विस का हो, चाहे वो विविध भारती का हो, चाहे वो अन्य स्टेशन भी हो, हम उनको सुनकर ही सोते हैं जी।
क्या बात है, वाकई रेडियो की दुनिया ही अलग तरह की है। अब रेडियो को ऑडियो की दुनिया के नाम से भी जाना जाने लगा है और पूरी दुनिया में पॉडकास्टिंग और रेडियो, वेब रेडियो इस तरह के चलन बढ़े हैं जिसमें लोग कविता, कहानी और उपन्यास तक की रिकॉर्डिंग करके अब मतलब ऑडियो बुक्स मिल रही है। अब लोग कार पे चलते हुए ऑडियो बुक्स, मतलब बुक किताब पढ़ने की बजाय ऑडियो बुक सुनते हैं, मतलब उसमें सिर्फ आवाज़ें नहीं होती है, मतलब कथोपकथन की जो कथा है उसके कथोपकथन की आवाज़ें नहीं होती है, बल्कि साथ ही साथ उसके उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। मतलब जैसे किसी कहानी में लिखा है कि दरवाज़ा खुला, तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ वो आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला, मतलब ये पूरी ऑडियो की दुनिया में इस तरह से बदल गई है। लोग हवाई जहाज की यात्राओं में, कार की यात्राओं में, ट्रेन की यात्राओं में किताब पढ़ने की बजाय अब ऑडियो बुक्स, ऑडियो कहानियां, ऑडियो कविताओं का सहारा लेने लगे हैं। वही एक रोल निभा रहा है हमारा अर्पा वेब रेडियो, क्योंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है, तो अर्पा रेडियो में जितनी कहानियां, कविताएं, प्रोग्राम्स हैं वो किसी भी समय लोग सुन पा रहे हैं। ये तो हमारी बात रही, लेकिन कमड़े सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या करते रहे। जैसा आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी में थे, तो अभी आपकी उम्र क्या है?
जी सर, मेरी उम्र अभी 65 साल की है।
अच्छा,
और आप अभी अपन थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान के लिए अभी जो अन्य माध्यम है, बहुत सुंदर है सर। ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त होता है सर, हम शुरू से भी जानते रहे हैं। एक सुनने से, एक पढ़ने से और एक देखने से।
जी,
तो जो आप ऑडियो वाली बात कर रहे हैं, आज बहुत सारे मतलब कहानियां, पुस्तकें जो हैं बिल्कुल ऑडियो सुन के ही, अभी तो बहुत से कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी के माध्यम से हो रही है सर।
बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, सुनने के माध्यम से। और इससे क्या होता है, सुनने से और अगर कोई पिक्चर हम देख भी रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी हम किसी चीज को एडॉप्ट कर पाते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं सर, मैं शासकीय सेवा में रहा और विभाग का नाम डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग।
अच्छा,
और इसमें मैं विभिन्न जिलों में भी रहा, दुर्ग में, पूरी मेरी बिलासपुर में रहा, सीधी में भी रहा मैं। तो विभाग में जब तक रहा मैं जिलों में, तो मेरी पदस्थी जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर रही। और 2002 में जब प्रमोशन मेरा हुआ तो मैं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी के पद पर राजनांदगांव में पदस्थ रहा मैं, और वहाँ 9 साल की सेवाएं अपने दी हैं। और उसके बाद उससे भी उच्च पद पर जो क्लास 1 की पोस्ट कहलाती है, वो मैं भाग में डायरेक्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में रहा। तो इस प्रकार ये मेरा समय निकला है, और बहुत अच्छा रहा सर कि हम लोगों के विभाग में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि योजना एवं सांख्यिकी विभाग, योजनाएं भी विभाग में ही, मतलब सभी विभागों की जानकारियां आती हैं और उनका एक कंपाइलेशन होता है, और जो भी योजनाएं आज हमको राज्य स्तर से संचालित मिलती हैं, जो जिले तक जाती हैं, जिले से विकास खंड, तहसील और गांव तक जो जाती हैं, ये कहीं ना कहीं एक जगह जो है वो एक जाई रूप में तैयार होती है, और उसके बाद में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बड़ा गर्व है मुझे कि मतलब मैं ऐसे विभाग में रहा जहाँ मतलब हर विभाग की, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो और या शिक्षा विभाग हो, जो भी बड़े बड़े विभाग हैं, मतलब ये देखो कि इनके विभागों में जो भी, यदि हम ये कहते हैं सर कि कहीं प्राइमरी स्कूल की जरूरत है, कहीं हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में उन्नयन की जरूरत है, ये कैसे पता चलता है? जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं आएंगे किसी भी चीज के, तब तक हम लोग कोई भी योजना नहीं बना सकते हैं। तो जब जैसे जैसे मतलब स्कूलों में बालक बालिकाओं की संख्या, दर्ज संख्या बढ़ती है, उस प्रकार से भी योजनाएं बनती है कि क्या यहाँ पे और स्कूलों की जरूरत है और शिक्षकों की जरूरत है। तो इस प्रकार हमारा विभाग जो है, हर विभाग से लगभग मुझे ऐसा लगता है, विद्युत विभाग की भी जानकारी हमारे यहाँ आती है, खनिज विभाग की भी रहती है, जन सूचना विभाग की भी रहती है, रोजगार कार्यालय की भी रहती है, पीएचई की है, स्वास्थ्य विभाग की है, महिला बाल विकास विभाग की है, यहाँ तक कि नापतौल विभाग की भी जानकारी हमारे यहाँ आती है, आरटीओ की जानकारी पूर्ण रूप से हमें मिलती है कि वाहन के कितने प्रकार हैं, हैवी व्हीकल्स कितने हैं, लाइट व्हीकल कितने हैं, ऑटो कितने हैं, फोर व्हीलर कितने हैं, टू व्हीलर कितने हैं, इनके रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं। तो ये सारी जानकारियां इन सारे विभागों से, शिक्षा विभाग भी है, खाद्य विभाग भी है, पंचायत एवं समाज सेवा भी हमारे यहाँ है। तो इस प्रकार से ये जानकारियां जो हमारे यहाँ जिले में मंगाते हैं, तो जिले में इसका एक फॉर्मेट बना है सर, और जिले में ये हैंडबुक के नाम से पब्लिश होती है।
अच्छा,
जिला सांख्यिकी पुस्तिका के नाम से, जो थीसिस लिखने वाले हैं या जो पीएससी यूपीएससी वगैरह फेस करते हैं या जितने भी अपन मतलब उसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पुस्तिका बहुत सहायक होती है, खास करके जिले के लिए।
क्या बात।
और यदि राज्य के लिए कोई जानकारी चाहिए हमको, छत्तीसगढ़ के लिए पूरी जानकारी अगर कोई चाहिए, तो ये हमारे डायरेक्टेड में उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि वहाँ एग्जाइज जानकारी जो है वहाँ कंपाइल होती है वहाँ पे। एक विभाग का महत्व है सर, और मुझे मतलब आज गर्व हो रहा है कि जिस विभाग में मैंने खुद काम किया है, मतलब मेरे अंदर में जितने लोग रहे हैं और मैंने इस कार्य को संचालित किया है, आज मुझे अवसर मिल रहा है आपके माध्यम से, रेडियो अर्पा के माध्यम से, कि ये जानकारी जन तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और खास करके जो युवा पीढ़ी है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी मतलब जानकारी है। वो जिला सांख्यिकी कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं, और यदि उनके पास संभव रहा, जो हर साल ये पब्लिश्ड होती है और हर साल की अपडेट इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें, तो उनको एक फायदा होगा। और यदि उनके पास में पुस्तक रहेंगे उपलब्ध कराते हैं, अन्यथा आपको जो जरूरत है वो आप उसकी फोटो कापी, आजकल तो साधारण तौर पर फोटो कापी हो जाती है, यह उनके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।
क्या बात है, मतलब आप जिस विभाग में रहे हैं, योजना और सांख्यिकी यानी प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो वाकई बड़ा जितना आपने बताया है बहुत इंटरेस्टिंग विभाग है, और पूरे दुनिया में आज डेटा का बड़ा महत्व है, डेटा कलेक्शन की बहुत बड़ी डिमांड है। इतने सालों से, इतने पहले से भारत में हमारा ये जो विभाग है, कहना चाहिए समाज, राज्य और देश की डाटा इकट्ठा कर रहा है, और प्लानिंग और उसकी प्लानिंग की गुणवत्ता और प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंट हो, इस सब की जानकारी सरकारों के पास रखता है। क्या मैं सही हूँ?
बहुत सुंदर सर, और ये हमारे विभाग को जो राज्य स्तर से भी अगर कोई सर्वे होता है और सेंट्रल का भी कोई सर्वे होता है, तो आप यकीन करिए सर कि इसका रिजल्ट भी हमको मतलब समय सीमा में, यदि कोई सर्वे हमारे यहाँ, जैसे एक सर्वे मेरे रहते हुए आया था, मैंने राजनांदगांव में करवाया था, वो था जीपीएस सर्वे, था गुड्स ट्रैफिक सर्वे।
अच्छा,
तो वो उसके लिए चेक पोस्ट बने हुए थे, मतलब शासन की तरफ निर्धारित था, और वो सर्वे 72 घंटे का था सर।
अच्छा,
72 घंटे कंटिन्यू हमारे फॉर्मेट बने थे, उसमें जानकारी इकट्ठी करनी है, और आप यकीन नहीं करेंगे सर, उसको हमको 1 महीने के भीतर कंपाइल करके शासन को भेज देना था। मतलब ये जानकारियां इतनी मतलब अपडेट रहती हैं कि हम इसको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं भेज सकते सर, उस पर अच्छी समय सीमा है।
बिल्कुल,
तो बहुत बहुत क्विक सर्विस है, और अच्छा लगता है कुछ नया नया काम जब आता है, और मैं भी काफी जगह मतलब ट्रेनिंग वगैरह में जब गया, समझो तो हम लोग की ट्रेनिंग लगती ही रहती थी, खासकर हम भी सर वगैरह में जो है।
मतलब ये कहा जाए कि योजना सांख्यिकी विभाग बड़ा तत्पर विभाग है, क्योंकि इसके माध्यम से ही दूसरी योजनाएं और तमाम चीजें जो सरकारों को मिलता है, इसलिए ये त्वरित होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम कई बार सुनते हैं ये 1 वर्षीय प्लान है, 1 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना, या जितनी प्रकार की भारत में योजनाएं लागू होती है भारत के लोगों के लिए, वो उसका आधार क्या आपके विभाग से तैयार किया गया डेटा ही है?
जी जी जी, बहुत बहुत सही बोल रहे हैं सर। ये पंचवर्षीय योजनाएं भी जो बनती हैं सर, वो मतलब हमारे विभाग से कंपाइल हमारे विभाग से होती है, नाते विभाग वाले ही हैं, क्योंकि वो अपने विभाग के एक्सपर्ट होते हैं, है ना। लेकिन कंपाइलेशन और योजना विभाग में ही ये फाइनलाइज होता है, और वहीं से फिर राज्य मतलब सरकार के पास में जाती है योजनाएं जो, और उनको लागू करवाने के लिए वही मतलब सक्षम होते हैं।
क्या
तो
बात,
बिल्कुल बिल्कुल, योजना बड़ा गर्व है सर हम लोगों को, मतलब विधानसभा में भी जब बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे विभाग द्वारा ही उनको उपलब्ध कराई जाती हैं, और विधानसभा सत्र के पहले हम कोई भी जानकारी मतलब पब्लिश नहीं हो पाती है जब तक वहां पे ओके नहीं होते हैं।
जी जी, हमें भी गर्व है कि हम रमेश चंद्र कामड़े जी से बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति हैं जो हमें जो आज तक सुविधाएं सरकारों और देश से मिली है, चाहे वो बिजली पानी की योजनाएं हों, खाद्य की योजनाएं हो, सिलेंडर की योजनाएं हो, तमाम बहुत छोटी बड़ी, नहर की, खेत की, बीज की, ये तमाम योजनाओं में जिस विभाग की या जिन लोगों की हिस्सेदारी होती है उसको बनाने और समझाने के लिए, वो उनमें से एक व्यक्ति रमेश चंद्र कामड़े, जिन्हें रेडियो की दुनिया के लोग RC कामड़े के नाम से जानते हैं, वे हमारे साथ हैं। इस बातचीत को कामड़े सर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त आपसे गीत जानना चाहते हैं कि कौन सा गीत आप और मैं मिलकर और सुनने वालों तक पहुंचाने वाले।
जी जी सर, वैसे तो अभी इससे संबंधित कोई गीत नहीं, लेकिन फिर भी बरसात का समय है, सावन का महीना है, तो मैं चाहूंगा कि काला बाजार फिल्म का नगमा रफी और गीता दत्त की आवाज में है, और यह गाना देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। रिमझिम के तराने लेके आई बरसा।
रिमझिम के तराने, तो सुनते हैं।
झिमझिम के तराने लेके आई बरसात। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात,
याद आए किसी से वो पहले मुलाकात।
झिमझिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई पर खबर,
भीगे तन मन पर रख के फुहार।
प्यार का संदेशा लाई पर खबर,
मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात।
रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बादलों का शोर,
झूम घूम घूम नाचे मन का मोर।
सुन के मत वाले काले बादलों का शोर,
झूम घूम घूम नाचे मन का मोर।
सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ,
रिमझिम की तराने लेके आई बरसात।
याद आए किसी से वो पहली मुलाकात,
रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। तो करते हैं दिल के तार,
मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। को तुमसे मैं क्यों था बेकरार।
रह जाती है क्यों होठों तक पाके दिल की बात।
रिमझिम के तराने लेके आई बरसात,
याद आए किसी से वो पहले मुलाकात।
रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। झिमके तराने लेके आई बरसात,
याद आए किसी से वो पहले मुलाकात।
झिमझिमके तराने लेके आई बरसात,
याद आए किसी से वो पहले मुलाकात।
झिमझिमके तराने लेके आई बरसात।
श्रोताओं, आरसी कांबड़े जी से हमारी बातचीत हो रही है और रिमझिम के तराने अभी हम तक पहुंचे और हमारी बातचीत थी योजना और सांख्यिकी विभाग को लेकर के बातचीत हो रही थी। कामड़े सर, एक बात और इसी विषय पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, वो ये कि जो पूरे देश में जो गणना होती है कि इतने बेरोजगार हैं, इतने नौकरीशुदा लोग हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं का हेल्थ स्टेटस ये है, बच्चों के हेल्थ का स्टेटस ये है, ये क्या जो आपके विभाग के पास जो जानकारियां होती है उसका ही निष्कर्ष होता है ये?
नहीं सर, ये जानकारी जैसे हम महिलाओं के लिए अगर कोई बात करते हैं तो अभी क्योंकि एक ही विभाग तो सारे काम नहीं कर पाएगा सर, वो केवल डेटा कलेक्शन कर सकता है, लेकिन उससे संबंधित यदि कोई जानकारी मतलब हमको लगती है कि हाँ। केवल महिलाओं के उत्थान के लिए ही कोई मतलब
नहीं, सिर्फ मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारत के लोगों की, मतलब पुरुष महिला बच्चे किसान खेत और तरह की जो जानकारियां हैं वो आपके इस सांख्यिकी विभाग में आती हैं?
नहीं, वो जानकारियां तो वैसे उपलब्ध नहीं होंगे सर, वो इसलिए है कि जैसे अगर मान लो महिलाओं के लिए कोई योजना तैयार हो रही है, इसके लिए पृथक से मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग को ही मतलब
जी
बनाया गया है
जी,
क्योंकि हमको मेन पावर भी लगते हैं सर, तो मेन पावर इनके पास नहीं है और ये विकास खंड और गांव तक मतलब ये है समझो, तो इनकी जानकारी जो है मतलब इस विभाग के लिए मतलब ये है। वैसे ये बाल श्रम के लिए है, श्रम विभाग इसके लिए उच्च अधिकारी के रूप में है और इनका भी संचालनालय रायपुर में ही है समझो, तो ये अगर हम किसी उसमें लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर की कोई जानकारी है, किसानों के लिए ही केवल हम कहते हैं, तो इसके लिए कृषि विभाग मतलब उत्तरदायी होता है, कृषि विभाग इनके लिए योजनाएं बनाता है।
जी,
केवल आंकड़े हमारे यहाँ से थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे मान लो ये कहते हैं सर कि हमारे जिले में कितनी कृषि योग्य जमीन है, तो वो हम आपको बता सकते हैं कितनी कृषि योग्य जमीन, कितनी सड़क जमीन हमारे पास में है और कितने रकबे में धान उत्पादन होता है, हेक्टेयर में आता है, ये चना होता है, कितने में गेहूं होता है, कितने में ज्वार होता है, कितने में बाजरा होता है, ये जानकारी हमारे यहाँ जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर भी आपको उपलब्ध हो सकती है।
जी जी, जीडीपी, देश की जीडीपी की जो बात हम सुनते हैं, उसका आधार क्या इस विभाग से शुरू होता है?
इसी विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है सरकार को।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपसे हम कर पा रहे हैं, और वाकई लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि इतनी भी चीज़ें हम सुनते हैं कि फला योजना लगी लागू हुई या भारत की जीडीपी ये है, तो उसका पूरा डेटा कलेक्शन जो विभाग करता है उसके पूरी टीम के एक व्यक्ति से आज हमारी बातचीत हो रही है, आरसी कांबड़े जी से। कांबड़े जी, ये बताइएगा कि जन्म मृत्यु और इस तरह का जो डेटा होता है वो किस तरह से संधारित होता है आपके विभाग में?
बुक फॉर्मेट में है ये, मतलब जानकारी तो आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो यदि कोई लेना चाहे तो ये सीडी फॉर्मेट में भी उनको मिल जाता है, और बुक फॉर्मेट में मेन है हमारे यहाँ, इसमें तैयार होता, आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें चार्ट एंड ग्राफ भी बने रहते हैं सर साथ में ही।
अच्छा,
समझने के लिए बहुत आसान होते हैं, यदि जीवन स्तर मतलब प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति मतलब जो हम बनाते हैं अपन लोग, है ना, इसकी भी गणना अगर हम चार्ट में देखें तो मतलब हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, फिगर के साथ साथ आंकड़ों के साथ साथ एक ग्राफ भी रहता है उसमें बना हुआ, और आजकल कंप्यूटराइज हो गया है सर, तो वो तो बहुत अच्छा, लुक भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छा दिखता है, मतलब जैसे आंकड़े बोलते हैं वाली बात है ना सर।
क्या बात,
आंकड़े बोलते हैं, तो यदि यदि आप चार्ट को ही देखेंगे तो आपको समझेगा कि अगर हम किसी के जीवन स्तर का आकलन कर रहे हैं और वो ग्राफ में देखेंगे ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
बहुत सही बात की आपने कि आंकड़े बोलते हैं, मतलब व्यक्ति का विकास, भारत का विकास, राज्य का विकास, ये तमाम जो इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं या इसका आकलन करते हैं वो आप मतलब इस विभाग के द्वारा होता है।
जी जी,
चलिए इतनी बातचीत के बाद हम चाहते हैं कि एक और गीत आपके माध्यम से सुने।
सर दूसरा गीत है ये अभिलाषा फिल्म का, इसे रफी साहब ने अपनी आवाज दी है, ये संजय खान और नंदा परमार है, वादियां मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें।
तो लीजिए मिलकर सुनते हैं।
रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, वादियाँ जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही वादियाँ मेरा दामन रास्ते मिलने लगी तुमसे राहें मेरी। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं
का। ये बहुत बेहतरीन गीत आपने सुनवाया हम सभी को, श्रोताओं को, के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आरती कांबड़े जी से हमारी बातचीत हो रही है और कांबड़े जी आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि सरकारी सेवा के दौरान या ये तमाम अपनी नौकरी पेशा के साथ व्यक्ति के अपने कुछ शौक होते हैं, अपना कुछ हुनर होता है, वो आपके जीवन में क्या रहा है?
क्या बात है सर, आपने दिल की बात ले ली है समझो, है ना। और वाकई में कुछ लोग ऐसा कहते थे भी थे कि मतलब इस पद पर रहते हुए भी आप रेडियो का शौक रखते हैं, तो रेडियो को ठीक है गाने वगैरह सुनते रहे हैं। इसके अलावा भी थोड़ा साहित्य क्षेत्र में रुचि रही सर मेरी।
क्या बात।
और ये कहा जाता है कि लेखक और कवि जो देखता है वो लिखता है, वो है मतलब ये शौक थोड़ा सा रहा है, मैंने भी अनुभव किया बाहर बाहर रहा।
क्या क्या लिखते रहे हैं आप?
बहुत छोटी मोटी रचनाएं रही हैं सर, एक रचना हालांकि यहाँ तो नहीं लेकिन बिहार की एक पत्रिका कृत संकल्प निकलती थी और वो युवाओं की ही मतलब पत्रिका थी, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जब वो पत्रिका मेरे पास में आई तो उसमें मैं बिलासपुर में पदस्थ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसमें युवाओं को जब मैंने पत्रिका पढ़ी थी और मैंने मतलब एक रचना उनको भेजी थी बहुत अच्छा लगा था, और वो रचना थी आदमी।
बिल्कुल सुनना चाहेंगे
जी। तो आदमी शीर्षक था और आदमी के लिए मैंने लिखा कि दर्द को कांधे पे लिए मुजरिम सा खड़ा है आदमी, मुख पृष्ठ से कुछ हटकर हाशिए में पड़ा है आदमी,
क्या
जज्बातों के आसपास तस्वीर सा जड़ा है आदमी, और उनसे क्या गिला मुद्दतों अपने मुकद्दर से लड़ा है आदमी।
क्या
तो एक रचना रही है। और वहीं मैंने एक रचना और भेजी थी पर्व दिवाली का आया, और ये रचना भी वहां प्रकाशित हुई थी, इसने आलोक जग में फैलाने पर्व दिवाली का आया, और मिलन दिलों के गीत सुनाने पर्व दिवाली का आया, एक लंबी कविता थी इसमें कुछ अंश मैंने आपको बताया।
तो ये आपकी कविताएं जो हैं आप छपती भी रही हैं मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में, इसके अलावा आपने कहीं पढ़ी भी होंगी कविताएं किसी मंच पर या रेडियो स्टेशन, ऐसा कोई मौका आपके हाथ लगा?
जी जी जी, ये 1981 में आकाशवाणी रायपुर से ही मुझे आज मेरी बारी है कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिला था।
अरे वाह।
और उसके तत्काल बाद ही मतलब काव्य धारा और काव्य कलश कार्यक्रम होता था, उसमें तो अपनी रचनाएं पढ़ने का मौका मिला था। उसमें एक रचना थी, कभी प्रिय थे हम दिन के आज पराये लगते हैं, और संबंधों के बीच अकेले गुनहगार लगते हैं। ये रचना मैंने कुछ इस प्रकार से पढ़ी थी, मैं चाहूंगा कि श्रोताओं को भी इसका आनंद मिल जाए। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल।
कभी प्रिय थे हम दिन के आज पराये लगते हैं, और संबंधों के बीच अकेले गुनहगार लगते हैं, तो साकल बंद नहीं कि शायद लौट कभी वो आए, और रही तमन्ना दिल ही दिल में फूल सभी कुमलाए, तो इंतजार की बाहों में अरमान शलभ से जलते हैं और दूर तलक अफसाने अब तो शमशान लगते हैं और संबंधों के बीच अकेले गुनहगार लगते हैं। एक अंतिम स्टेंजा इसका भी है कि जिसका आंचल भरा खुशी से क्या दर्द किसी का समझेगा और बेगाने उल्फत की खातिर कोई आंसू क्यों बर्बाद करेगा। तो टूटा मन बिखरे सपने बिखरी सारी अभिलाषाएं टूटा मन बिखरे सपने बिखरी सारी अभिलाषाएं और आस पास हर लम्हे अब तो इतिहास लगते हैं और संबंधों के बीच अकेले गुनहगार लगते हैं।
वाकई संबंधों को संभाले रखना बहुत कठिन काम है और संबंध यदि बनाए रखें और कहते हैं कि संबंधों को बनाए रखना कठिन भी है और उतना सरल ही है। तो दोस्ती बनी रहे, आपस की मित्रता बनी रहे और बस एक दूसरे का ख्याल रखें। तो एक ख्याल और रखना होगा मुझे और आपको कि लोग बहुत देर से हमारी बातचीत सुन रहे हैं तो उनके गीत का भी ख्याल हमको रख लेना चाहिए।
तीसरे गीत के लिए सर ये ममता फिल्म का है, रफी और आशा की आवाज में है, धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन पर फिल्म आया है ये। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले।
वाह सुनिए।
बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटा रोक ना ले।
मुझको ये काले घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले।
इन बहारों में अकेले ना फिरो, फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो हो हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा, देखना बादे सबा रोक ना ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटा रोक ना ले।
मुझको ये
मुझको ये काले घटा रोके क्या।
लूं। बात ये है क्यों किसी का नाम लूं, हो न ऐसा मैं ही दामन थाम लूं। जा रही हो तुम तो हो, जा रही हो तुम बड़े अंदाज से, बड़े अंदाज से मेरी चाहत की सदा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काले घटा रोक न ले।
क्या बात है, राह में काली घटा रोक न ले। लेकिन हमारी ये रेडियो की फ्रिक्वेंसी हरपा वेब रेडियो की, हरपा कम्युनिटी की रेडियो की, उन काली घटाओं के बावजूद देश दुनिया तक पहुंचती रहती है और इतने सारे श्रोताओं का प्यार है कि हमारा जुड़ाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कामड़े जी, आपने जो फरमाइश की है गीतों की, उसमें तीनों में रफी कंटिन्यू है।
जी।
तो फिल्म संगीत का ये जो शौक है मोहम्मद रफी के थोड़ा तरफ ही ज्यादा है, आपका झुकाव लग रहा है।
जी। रफी की आवाज सब, ये तो खैर दुनिया में मतलब अमूल्य है, इनकी आवाज जो है इनका कोई साबित नहीं है। और इनके गाने बहुत, इनका कलेक्शन भी है मेरे पास में, इवन मैं अभी एक कुछ रिकॉर्ड भी मैंने बीच में लिए हैं सर।
अच्छा।
और हाँ, इसका तो वो टर्न टेबल नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने बाहर से इसको मंगवाया और वो एक गानों का कलेक्शन है जिसमें रफी के ही गाने कुछ ज्यादा है मेरे पास में। तो रफी मतलब मेरे फेवरेट मतलब गायकों में से हैं।
क्या बात है, मतलब अभी आपके पास, आप टर्न टेबल मंगवाए हैं, मतलब आपके पास ईपी एलपी जो बड़ी डिस्क होती है वो है।
बिल्कुल सर, और मैं सप्ताह में कम से कम दो गाने या तीन गाने तो मैं रिकॉर्ड प्लेयर पे ही सुनता हूँ। अभी भी अलबिला की रिकॉर्ड मेरे पास में है सर।
क्या बात है। तो ये जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि कामड़े जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अरपा वेब रेडियो सुनने वाले बहुत सी नई नस्ल के, नई फसल के लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं जो अभी अभी, जिन्होंने शायद टर्न टेबल या बड़े टेप्स नहीं देखे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एक काला डिस्क पुराना होता था जिसमें निडल चलती थी और वो गाना बजता था कई फिल्मों में या कथाओं कहानियों में आपने देखा सुना होगा, वो आज भी कामड़े जी के पास सुरक्षित और संरक्षित है। ये सूचना उन लोगों के लिए जो नए श्रोता हैं या नए जमाने के लोग हैं। कामड़े जी बताइए कि कौन कौन सी फिल्मों के वो डिस्क आपके पास है?
नहीं, अभी मुगले आजम का भी है मेरे पास में सर।
क्या बात है,
बहुत सी फिल्में हैं सर, मतलब वो 1970 के आसपास की जितनी भी फिल्में हैं, क्योंकि तो उसके बाद बंद भी होने लग गए थे ना, तो जिनके पास में था उनके पास में एक कलेक्शन रहा है तो उनके पास से ही मैंने लिया है। तो उसमें मतलब 1970 के पहले के गाने और 1980 के आसपास के भी गाने हैं वहाँ पे। जी
हाँ, उस समय डिस्क में लोग गाने तो सुनते ही थे, साथ ही फिल्मों की भी आती थी, फिल्मों की कॉमेंट्री और उसके साथ फिल्मों के सीन, शोले फिल्म के दो डिस्क आती थी।
हाँ,
वो वैसा कुछ आपका कलेक्शन या वो वैसा कुछ सुनने का आपका अनुभव?
हाँ, नहीं वो नहीं मिल पाए मेरे सर, अगर मिले तो आज तो मैं उसको ले लूंगा। हाँ, है ना?
वो आपको याद है क्या, लोग मतलब फिल्म को सुनते थे, वो कैसी याददाश्त है आपकी, उस संदर्भ की क्या अनुभव?
जी आपकी सफाई का भी गाने हैं मेरे पास में। और अभी के टर्न टेबल में सुनील सर, मैं आपको बताऊँ, अभी ये बार बार बदलने वाले नहीं है सर, ये इसमें घंटों का ड्यूरेशन दिया हुआ है, एक घंटे है उसमें लिमिट, इतने घंटे या इतने रिकॉर्ड तक वो निडल चलेगी आपकी। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, क्यों अभी तो मैं लिया हूँ तो उसके बाद तो मेरे यहाँ करीब करीब 4 साल हो गए हैं।
अच्छा।
तो जरूरत तो नहीं पड़ी है मुझे, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे मिल जाएगी, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा मुझे।
क्या बात,
वो मिल जाएगी मुझे, मैंने क्या जहाँ से लिया है उसको बता कर रखा था, तो बोले मैं मंगवा दूंगा, बोले मेरी जिम्मेदारी है उनके लिए, तो इसको भिलाई से ही परचेज किया था मैं।
वाकई मतलब हमको सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो निडिल जो आजकल कहीं नहीं मिलती है, वो उसके लिए आप इतना प्रयास करते हैं और वो उन डिस्क से गाने सुनने का जो आपकी चाह।
सुनिए सर, ये टर्न टेबल मैंने उस समय दो मंगवाए थे, और एक मेरे ब्रदर अभी बिलासपुर में रहते हैं, कुमार उमेश के नाम से वो मतलब है अभी वहाँ, उमेश के नाम से, वो भी अपने पास में रखे हैं उसको, तो यहाँ से दो मैंने टर्न टेबल मंगवाए थे, तो मुझे अच्छा लगा।
क्या बात है,
रिकॉर्ड में जो गाने आप सुनेंगे, अगर संगीत प्रेमी जो है ना, वही उसका आनंद ले सकता है सर।
सही बात।
अभी हम यूट्यूब में भी सुनते हैं गाने, लेकिन संगीत का आनंद जो है वो उनमें से जो झनकार और घुंघरू की आवाज और तबले की आवाज, बांसुरी की आवाज, गिटार की आवाज जो हमको सुनने को, जैसे पारस मणि के भी गाने अभी देखेंगे हम, तो पारस मणि के गाने आप शुरू से आखिरी तक अगर एक बार एलपी चालू कर देंगे ना, आपको बीच में गाने उठाने का, बंद करने का मन नहीं करेगा सर। मतलब एलपी में मैंने ये देखा है सब, आप तो पूरे गाने ही सुनेंगे तभी आप मानेंगे, अगर आप संगीत प्रेमी है तो।
वाकई वाकई, वो जो आहिस्ता से डिस्क पर निडिल रखने की जो कहना चाहिए नजाकत है, वो बता देती है कि आप संगीत से आपका जुड़ाव और इन इंस्ट्रूमेंट से आपका जुड़ाव क्या है।
ये तो ऑटो है सर, अभी जो ये तो आप चालू करेंगे वो ऑटो में ही आएगा वो, आपका प्ले शुरू हो जाएगा, है ना।
संगीत की बातचीत के साथ आपका गीत कौन सा होगा?
मेरा गीत, चलिए सर, आपने रफी साहब का भी जिक्र किया था तो महेंद्र कपूर साहब को भी नहीं भुला जा सकता, क्योंकि आवाज तो सभी की प्यारी होती है सर। सवाल ये हमें क्या पसंद है, ये वाली बात है। तो अगला गीत मैं वो कौन सी फिल्म से ले रहा हूँ, और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, और इसको फिल्माया गया है मनोज कुमार और हेलन कर्कर, और गाने के बोल हैं, छोड़कर तेरे प्यार का दामन ये बता दें कि हम किधर जाएं।
छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाए।
हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में, हम खुशी से ना आज मर जाए।
कितनी प्यारी हैं ये हसी घड़ियां, इनसे कह दो यहीं ठहर जाए।
हमको डर है कि तेरी बाहों में, हम खुशी से ना आज मर जाए।
कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आंखों की रोशनी रख दूं, तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में, अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं।
मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर
छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। अपनी आँखों से
आज ये कह दो अब न होठों पे उम्र भर आए छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता दे के हम किधर जाए
हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाए
छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये बता कि हम किधर जाएं वाकई इतनी ये बातचीत इस दौर में पहुंच गई है कि अब ऐसा लग रहा है कि कांबड़े जी से हम भी कहें कि ये बता कि हम अब किधर जाएं
सुनील सर एक चीज और मैं आपको थोड़ा बता दूं अभी जब से मतलब स्मार्ट मतलब फोन आने लगे हैं और हम लोगों अगर बुद्धिजीवी हैं तो है तो हमें देश दुनिया की जानकारी मिलती ही रहती है और अभी जिनके पास भी स्मार्टफोन है वो और थोड़ा सा देखें ये जितने गाने मैं आपको बता रहा हूँ सब इसको मैं यकीन नहीं करेंगे आप मैं जब कभी भी किसी रेडियो स्टेशन में फरमाइश चाहे वो मेल के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो मैं इन गीतों को इवन छत्तीसगढ़ी गाने भी जो आपके मैं भेजता हूँ उसको एक बार यूट्यूब में मैं सुन लेता हूँ सर
अच्छा
सेलेक्ट करके मैं यूट्यूब में एक बार सुनता हूँ उसको मैं उस गीत का आनंद भेजने के पहले मैं उठाता हूँ तो जी जी तो एक गीत तो और था सर मैं एक फिल्म का गीत यूट्यूब में सुना मुझे बहुत आश्चर्य लगा ये फिल्म तो मतलब औरत फिल्म कहते हैं 1966 की फिल्म है फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्म आ गया है तो इसके बोल तो मैं थोड़ा सा भी आपको बताने में असमर्थ रहूंगा सर लेकिन बोल भी इसके बहुत मतलब बहुत प्यारे बोल थे इसके कि अगर हम सुनेंगे ना इसको पिक्चराइज कैसे किए हैं ये मतलब हमारी समझ से बाहर है सर ये तालाब के अंदर है और स्टूडियो में है आउटडोर शूटिंग है क्या है मतलब नहीं सब ओरिजिनल दिख रहे हैं सर
क्या बात है तो औरत फिल्म का गीत भी हम आपको सुनाते हैं
ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है की परछाई पड़ी है लहरों पर ये किसकी नशीली जुल्फों की परछाई पड़ी है लहरों पर आकाश पे एक बादल भी नहीं नदिया में घटा गिर आई है आकाश पे एक बादल भी नहीं नदिया में घटा गिर आई है
खड़ा है मौजों में तूफान ले अरमानों
के बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है।
ये किस की मचल थी ये तूने मौजों को तड़प सिखलाई है।
ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है।
कामड़ी जी, आपने जो बताया कि आप फरमाइश जब भेजते हैं तब एक तरह की स्क्रूटनी आप करते हैं, आप मतलब एक तरह का सेंसर आप कर लेते हैं कि हाँ कौन सा गीत लोगों को सुनवाया जाए, ये बड़ी अलग बात है।
ये, हाँ ये सर, अब चूंकि स्मार्टफोन हमारे पास में है सर, हम मतलब हर चीज के दो पहलू जैसे ही हैं। ये तो ठीक है कि ये हमको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन सवाल है कि हम इससे क्या क्या ले सकते हैं। मतलब अगर हम हमारे पास कंप्यूटर है सर और हम अगर उसको कमांड दे तो वो हमें क्या कहते हैं कि आपको मतलब थोड़ा सा विषय से अलग मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सर, अपना चाहत रखेंगे। मैं जब विभाग में रहा सर तो मेरे विभाग में कंप्यूटर जब आए विभाग में तो मैं भले ही मेरे यहाँ प्रोग्रामर की पोस्ट नहीं थी सर, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं प्रोग्रामर को चाहे वो असिस्टेंट प्रोग्रामर रहे या प्रोग्रामर रहे उसके फॉर्मेट में बनवाता था सर कि अगर ये जानकारी मुझे इस रूप में मांगेंगे तो मैं कैसे दूं।
क्या
अगर किसी हायर ऑफिसर को मेरी या मैं खुद चाहूंगा एक इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर कोई स्क्रूटनी हो रही सर कि हमने इतना इतना लोन किसी को दिया है PRDA से, वो यदि सर्विस सेक्टर का है सर या एग्रीकल्चर सेक्टर का है या इरीगेशन का है, तो उसमें हमने मतलब केवल लोन बांट दिया नहीं सर, हम उसके आइटम वाइज मतलब इंफॉर्मेशन पे भी जाते थे। यदि किराना के लिए कोई लोन बटा है तो किराना कितना है, अगर गोट यूनिट में अगर वो लोन बटा है तो गोट यूनिट में क्या है, चाहे वो भैंस के लिए हो चाहे बकरी के लिए हो या गाय के लिए हो, मतलब इतने डिटेल मतलब मैं उसको निकलवाता था समझो। तो चूंकि स्मार्टफोन आया सर तो मुझे लगा कि भाई अगर हम इसको कुछ मांगते हैं ये हमको दे रहा है तो उसको लेने में क्या नुकसान है हमको, वो सब गाने हमको तो रेडियो पे फरमाइश भेजेंगे तो अगर बजाने वाले बजाते हैं कभी कभी अक्सर बज जाते हैं गाने, अच्छा लगता है मुझे। और हिट्स ऑफ बॉलीवुड एक मतलब चैनल है सर अभी है ना, तो इस यहाँ तो जो गाने भेजोगे वही बजते हैं वहाँ पे, भले ही समय लेते हैं वो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो गाना मैं सुन लेता हूँ अगर भेजा हूँ तो मुझे दोबारा उसका आनंद मिल जाता है। ये एक शौक रखा मैं कि अगर मैं वो गाने सेलेक्ट कर रहा यूट्यूब में और पहले सुन लेता हूँ मैं और फिर मुझे कलाकार मिल जाते हैं तो मुझे भी एक कलेक्शन के लिए वो मिल गया है समझो, रास्ता मिल गया है कि मैं उन पुराने लोगों को जो 1975 में 1960 में 1947 में मतलब जो गायक गायिकाएं रही हैं जो पर्दे पे काम किए हैं जो पर्दे के पीछे भी रहे हैं उनको भी हम जान पा रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये अपने जानने के लिए अपने ज्ञान के लिए मुझे अच्छा लगा समझो, ये अगर श्रोता इसको फॉलो करते हैं तो उनको वो भी कोई अच्छा कलेक्शन रख सकते हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ। और है कलेक्शन, ये अपने लिए कभी रहेगा नहीं सर, ये रहेगा दूसरों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए।
वाकई वाकई,
यदि मैं इसको कहीं पे लिख के रख रहा हूँ कोई डायरी बना रहा हूँ तो ये निश्चित रूप से उनको काम आएंगे, मैं कह रहा हूँ।
वाकई इस तरह के विभाग में आपने सेवाएं दी हैं उसका प्रभाव भी है कि आपका जो कलेक्शन है वो आपके पास निश्चित तौर पर हमेशा दुरुस्त रहता होगा। और इस समय हमें सुनने वाले तमाम लोगों के लिए वाकई ये सीख की बात है कि किस तरह से जो फिल्म म्यूजिक को शिद्दत से चाहते हैं वो उसके प्रति कितना सचेत होते हैं। जैसे कामरे जी ने बताया कि वो गाना पहले सर्च करते हैं, सुनते हैं, फिर फरमाइश भेजते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की जो बात उन्होंने की कि मोबाइल का उपयोग भी वो किस तरह से कर रहे हैं, मतलब मोबाइल पर बहुत सारे लोग समय बर्बाद कर रहे हैं लेकिन कामड़े जी उसमें से बहुत अच्छे गीतों की सर्चिंग कर रहे हैं और श्रोताओं तक पहुंचा भी रहे हैं। ये वाकई आपका ये जो योगदान है, ये जो प्रयास है अर्पा रेडियो के लिए बहुत ही बड़ा है और बहुत ही आपको रिकग्नाइज करने लायक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो के लिए दिया। और कामड़े जी चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि बने रहिए हमारे साथ और लोगों को जोड़ते रहिए हम सभी के साथ। शुक्रिया कांबड़े जी आपका बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आप अर्पा टीम के सभी लोगों को जिसमें संज्ञा टंडन जी हैं और सुनील चित्रे जी हैं, अनिश श्रीवास जी हैं और जितने भी आपके साथ सहयोगी अर्पा में हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे ये एक सुनहरा अवसर दिया और इसका लाभ उठाने का मौका दिया। धन्यवाद सर।
शुक्रिया।
सप्ताह के श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता मेहमान थे जवाहरनगर दुर्ग के श्री आरसी कांबड़े, इनसे बातचीत की सुनील चिपड़े ने और कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ठाकुर ने।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।